गया है कि ये होना शायद।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहरीन के बेलाग तबसरे और तबादले ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में राउंड टेबल, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं अंजुम हरल गिल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के एहतजाज, मार्च और ताजरों की हड़तालें और इस सारे सीन के पाकिस्तान की मईशत के ऊपर असरात के बारे में। और आप जानते हैं सामीन के पाकिस्तान के अंदर टैक्स की जो शरायत हुकूमत ने नाफिज़ की उसके ऊपर ताजरों का जो है वो एहतजाज जारी है और ताजरों ने 2 दिन के लिए मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। ये 28 और 29 अक्टूबर के लिए है। और फिर आप जानते हैं कि दारुलकूमत इस्लामाबाद में 31 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान वो एक एहतजाजी मार्च के साथ दाखिल हो रहे हैं। मुतवक्के तौर पे धरना भी हो सकता है और पाकिस्तान की जो दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही हैं और बड़ी सियासी क़यादत की बीमारियों के सबब हुकूमत को सख्त तनकीद का और दबाव का सामना है। ये सारे अवामिल मईशत पर कैसे असरानंदाज हो रहे हैं, जहाँ पहले ही महंगाई बड़ी है और हुकूमत के इदारे बज़ात खुद इसको तस्लीम करते हैं, और दूसरी जानब जो है वो मईशत की रफ़्तार सुस्त है। अगरचे हुकूमत का ये अब दावा है कि गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो पहले से बेहतर हो रहा है, और हुकूमत का ये कहना है कि 2 सालों के अंदर मुआशी असरात जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो सकते हैं और उसके असरात जो हैं वो वाजे नज़र आएंगे। लेकिन दबाव है और ये दबाव जो है वो मुल्की सियासत पर और मुल्की मईशत पर कैसे असरानंदाज हो रहा है, इसका हम जायज़ा लेंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है और मेंबर हैं इस वक्त इकोनॉमिक कमेटी के, और इससे पहले वो चेयरमैन भी रह चुके हैं इस कमेटी के। हमें ज्वाइन करेंगी नादिया फारूक, इकोनॉमिक कंसल्टेंट हैं विदेशियन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिस्ट हैं। हम कोशिश करेंगे कि ताजर बिरादरी से हमें अजमल बलोच ज्वाइन करें, ट्रेडर लीडर हैं, और हमें खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और इकॉनमी पे बिलखसूस उन्होंने बहुत काम किया है, तजयकार हैं, पोलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, सो उनसे मुआशी और सियासी दोनों अवामिल के ऊपर हम उनका तजिया लेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उनसे हमारी बात हुई, होपफुली वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो मुल्क से बाहर हैं, प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तान अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कामर्स के और बिजनेसमैन है ऑफकोर्स, सो उनसे हम राय लेंगे। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमें हम्माद अज़हर साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं उनसे भी अगर हमारा रब्ता हो जाए तो हम उनका वर्जन भी इसके अंदर शामिल कर सकें। पाकिस्तान के आपको सामीन बताते चलें कि माली साल 2019-2020 के बजट में नए टैक्स इकदाम किए गए थे जिसके खिलाफ मुल्क भर में ताजर तनजीमों ने मंगल के रोज़ से 2 रोज़ा शटडाउन हड़ताल की कर रही हैं। हड़ताल के बायस मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कारोबार मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे मुअत्तल है। ताजर रहनुमाओं का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से जो शरायत आयद की गई हैं उसके बाद कारोबार करना मुश्किल हो गया है और इस सबब वो हड़ताल पर मजबूर हैं। ताजर बिरादरी ने रवां साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत ने उन पर आमदन से ज़ायद टैक्स नाफिज कर दी हैं। अगरचे बजट मंजूर हुए 4 महीने गुजर चुके हैं और इस अरसे में ताजर तनजीमों की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो एहतजाज हुआ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नशस्तें भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी है। आज मंगल के रोज़ भी वज़ीर मुशीर ख़जाना के साथ ताजर कम्यूनिटी के मुज़ाकरात हुए लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि एक तो ये है कि जो टैक्स असलाहत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना होगा और उसके साथ साथ जो है जो ख़ास तौर पे हुकूमत इस बात का पाबंद बनाती है बिजनेसमैन को, ताजर कम्युनिटी को, कि वो ख़रीदारों की 50,000 से ज़्यादा अगर ख़रीदारी है तो उसके लिए वो लिस्टें फ्राहम करें और शनाख्ती कार्ड की शर्त को कबूल करें। ताजर बरदरी इस बात पे भी मुज़ाहमत दिखा रही है और उनका कहना है कि ये जो है ये मुनासिब इकदाम नहीं है, ये क्यों कर नहीं है। और इसके अलावा कुछ टैक्सेस के ऊपर भी और इकोनॉमी की जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी को एतराज़ात हैं, सो बात हम करेंगे। नादिया फारूक साहब हमारे साथ हैं, हमने उनका तारुफ कराया, इकोनॉमिक कंसल्टेंट हैं विदेशियन डेवलपमेंट बैंक। बड़ी पिक्चर में पहले उनसे बात करते हैं फिर आते हैं ज़रा इस एहतजाज की जानिब भी। नादिया बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के मुशीर ख़जाना वो कॉन्फिडेंट हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जो स्लो मईशत थी या जो मुश्किल दिन थे मुआशी एतबार से, वो पहिया जो है या वो अब सूरत हाल बदल चुकी है और ये टर्न अराउंड हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो मईशत मुस्तहकम होगी। आपके ख्याल में अब तक हुकूमत ने पिछले 14 महीनों के दौरान क्या ऐसे इकदाम किए हैं जो मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत बनाते हों? जी नादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हाँ जी, मुझे
जी
आपकी आ रही है, बहुत देर हो के आ रही है।
जी
बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। एक्चुअली अगर हम इंडिकेटर्स तो हमें इम्प्रूवमेंट तो नज़र आती है, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर भी है और इसी तरह से जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट कम हुई है जो कि अभी फिर अपवर्ड है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी उस तरह से नहीं बढ़ी है जिस तरह से बढ़नी चाहिए। इसके लिए आपको पहले प्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, उसके आगे से हम जरूर देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट एज सच नज़र नहीं आ रहा प्रोडक्शन साइड पे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो बहुत बुरी तरह से स्टक हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं कि ट्रेडर्स जो है वो आए दिन वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो भी जारी साथी है। तो जब तक हमारी प्रोडक्शन लाइन नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपनी ना पाएंगे, वो एक्सपोर्ट बैंक जो है वो हम इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे उस तरह से जाके। यहाँ तक बात है आपके जो बाकी माशी इशारे हैं जिसमें आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो अपवर्ड है उसका ट्रेंड, क्योंकि हमारा डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना होता है इकोनॉमी के डिफरेंट जो बाकी पहलू हैं उनके साथ ही। जहाँ तक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात है, कंपनी के नाम से बहुत कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि जिस तरह से वो आ रही है क्या हम उसको सस्टेन भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसके आने की वजह से हमारी अपनी जो अंदर की मौसी जिसका तल्लुक के साथ है या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, क्या उन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है उस इनफ्लोज का? वो
नादिया, अगर हम आप कॉल ड्रॉप करके दोबारा आपके
नहीं
पास आएं, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सही नहीं पहुंच पा रही, और अगर मेरे प्रोड्यूसर आपसे बात करते हैं और पॉसिबल अगर है तो कोई लैंडलाइन अगर दीजिए ताकि हम आपको बेहतर तौर पे सुन सकें और हमारे लिसनर्स भी आपको बेहतर तौर पे सुन सकें। सामिन, हम आपको आज ये कहते चले कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0800-777-789, ये टोल फ्री नंबर है। हम आधे घंटे के बाद आपकी कॉल्स जो हैं वो लेंगे। आप मईशत के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, आप क्या समझ रहे हैं जो मुआशी दबाव बढ़ाए उसने आपको कितना मुतासर किया है, हुकूमत की कोशिशों से आप कितना मुतमईन हैं, अपोजिशन के जो इल्ज़ाम हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, इस बारे में आप अपनी हमें राय दे सकते हैं। हमारे साथ होंगी नादिया फारूक, कैसर अहमद शेख साहब को हम कोशिश कर रही हैं, अजमल बलोच जो हैं वो हमारे साथ होंगे, खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जब से गवर्नमेंट ने ये बजट दिया 4 महीने पहले, तब से ये एहतजाज हो रहा है। ताजरों के बुनियादी मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि जो नेट टैक्सेस हैं और कारोबार को जो दस्तावेज़ी शक्ल देने के लिए इकदाम किए गए हैं उस पर उनको तहफ़ुज़ात हैं। वो गुज़श्ता 4 माह से एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत और कारोबारी तबकों के दरमियान इख्तलाफ की एक वजह खरीदो फरोख्त के दौरान शनाख्ती कार्ड की शर्त भी है, जिसे कारोबारी हज़रात मानने को तैयार नहीं हैं। ताजरों के बुनियादी मुतालबात में 50,000 से ज़ायद मालियत की अशिया की खरीदो फरोख्त पर आयद शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म करना है। उनका कहना है कि इस इकदाम से कारोबार में मुश्किलात सामने आई हैं। ताजिर ये भी चाहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनसे कुल आमदन के बजाय सिर्फ खालिस मुनाफे के ऊपर टैक्स लिया जाए। ताजरों का ये भी मुतालबा है कि रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स का कानून लागू किया जाए। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने जो नए इकदाम किए हैं उससे ताजरों को विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिया है, जिस पर उन्हें एतराज़ है, लिहाजा वो टैक्स अदायगी के तरीक़ाकार को आसान बनाने और टैक्स रिटर्न फॉर्म उर्दू में करने का भी मुतालबा कर रही हैं। ताजर लीडर्स ये कहते हैं कि उनके मुतालबात की मंजूरी के लिए वो हुकूमत के साथ कई बार मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन जब तक वो बात नहीं बनती है वो हड़ताल
तो
की कॉल देने पर
नहीं
मजबूर
नहीं
हैं।
नहीं
जी
नहीं है।
अब नादिया आप मुझे सुन सकती हैं? अब आप ये आवाज़ बेहतर आ रही है? जी
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, अनफॉर्चुनेटली।
जी मैं आप मुझे सुन सकती हैं? वो रिपीट हो रहा है,
बहुत मध्यम असद, आपकी आवाज़ बहुत ही
जी
धीमी है।
आप बताइए, अब आप कुछ बेहतर सुन पा रही हैं? हेलो,
मैं सही तरह से सुन नहीं पा रही हूँ आपको, मुझे इतना पता है आप क्या कह रहे हैं लेकिन बहुत ही मध्यम।
ठीक है, हम मीनवाइल कोशिश करते हैं आप इसी को रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर सुन सकते हैं, और अगर आप शुरू से जो मेरा पहला सवाल था उसी को दोबारा रैप अप करें तो ज़्यादा आइडियल होगा।
आई कांट अंडरस्टैंड, आप या तो स्काइप कॉल कर ले मुझे।
इस वक्त हम उसको स्टूडियो से इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेंगे। जी
हेलो,
जी हेलो जी, हम आपको दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे हमारा रब्ता हो जाए, और हमारे जो मेहमान हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं हमें। और ये हम आपके सामने कुछ नुकात बयान कर रहे थे कि ताजर जो कम्युनिटी है उनके कंसर्न्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है। और कुछ देर पहले वहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच ने। हम कोशिश करेंगे कि अजमल बलोच भी हमारे साथ हों। उनका कहना यह था कि हमारे जो अक्सर ताजर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टैक्स रिटर्न भरते हों। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम बैंकों को टैक्स गोशवारे जमा करने का इख्तियार दिया जाए। ताजरों ने यह भी ऐलान किया कि जब तक हुकूमत ताजरों के मुतालबा तस्लीम नहीं करती, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि ताजरों ने 29 और 30 अक्टूबर को, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, कि हड़ताल की कॉल दे रखी है। दूसरी जानब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वो मुल्क में मुआशी असलाहत लाना चाहती है, जिसके लिए कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा कारोबारी तबके को हुकूमत का साथ देना चाहिए। इससे पहले ताजरों के जो मुतालबे थे उसमें हुकूमत ने 50,000 से ज़ायद मालियत की अशिया की खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की फरहमी की शर्त को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर रखा था। ख्याल रहे कि हुकूमत ने इस साल के बजट में टैक्स असलाहत मुतारिफ़ कराई और इस ज़िम्न में मज़ीद अफराद को टैक्स के दायरा कार में लाने के लिए इकदाम भी किए थे। और हुकूमती इकदाम पर ताजर बरदरी का मौक़िफ़ है कि यह नामसाइद मुआशी हालात में मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। सो एक तरफ तो ये इकनॉमिक प्रेशर्स हैं, दूसरी तरफ जो पोलिटिकल प्रेशर्स आ रहे हैं जो बरह रास्त पोलिटिकल लैंडस्केप को या सियासी मंजरनामे को असरअंदाज करते हैं, वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जिनमें तो उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप उनके सरबरा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की अभी तक उनके स्टेटमेंट्स के मुताबिक अखलाकी हिमायत के साथ एक मार्च की क़यादत कर रहे हैं। ये मार्च जो है वो सिंध से होता हुआ पंजाब में दाखिल हो चुका है और इसको 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद आना है, जहाँ पे वो एक बड़ा मुजाहरा करना चाहते हैं अपनी ताकत का। और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है कि वो अपने हतमी जो मुतालबात हैं उसकी लिस्ट वो हुकूमत को उस वक्त वो फराम करेंगे। बुनियादी मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुसाफी हों। एक जब टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र डालते हैं, जब दूसरी जानब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और साबिक सदर, उन दोनों की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक उनकी पार्टी उनकी लीडरशिप उनके ये सख्त तहफ़ुज़ात और कंसर्न सामने आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी तो सेहत की बुनियाद के ऊपर उज़र सेहत पर उनकी बेल हो चुकी है और उनकी आज ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक उनकी सज़ा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल भी हुई है, जिसके बाद वो अपनी पसंद के डॉक्टरों के साथ मशावरत कर सकते हैं और उनके ज़ेर इलाज रह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर एक जो शक्ल बनाती हैं वो सियासी अदम इस्तेकाम का है, जो अल्टीमेटली उसके ऊपर असरअंदाज होती है। खालिद जमील साहब को भी आप देखिए, खालिद जमील साहब हमारे साथ होंगे और नादिया फारूक हमारे साथ हैं। नादिया, होपफुली अब आप हमें बेहतर सुन सकती हैं।
जी बिल्कुल
जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बल्कि कहूँगा कि इसको समझें कि जो मेरा पहला सवाल था उसी को अब आप अगर रिस्पॉन्ड करें, रैप अप करें कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनली जो बिजनेस मैन है वो क्यों मुतमैन अभी तक नहीं हो सका है, बिजनेस मैन के जो मुतालबात हैं जायज़ हैं नहीं हैं, आपकी आपकी ओपिनियन क्या बनती है?
देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाह रही है, लेकिन ठीक है, इससे तो कोई इख्तलाफ की बात नहीं है मेरे ख्याल से एज एन इकोनॉमिस्ट। और अगर हम इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के साथ भी इंटरलिंक करें तो यही देखा जाएगा कि हमारे मुल्क को भी जरूरत है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की, बहुत अशद जरूरत है। हम अभी स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी हैं, उसको भी देखें, उसकी जरूरत और हमारी अपनी जरूरत भी है। लेकिन इस टाइम पे इस तरह की इस्लाहात करना जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को ट्रिगर कर रही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन हुई भी है। जो बिजनेस के वैसे सूरत हाल है वो बहुत कमजोर है, गो के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफी इंप्रूव किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। एकदम से हम नहीं देख सकते कि अभी हमें ऑन ग्राउंड उस तरह का इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। ओवरऑल इकोनॉमी क्योंकि बहुत सुस्ती का शिकार है, तो इस वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है उसका मुतालबा करना या उसका शोर मचाना वो बजा है, लेकिन देखा जाए इकोनॉमिकली तो वो अच्छा है। बाकी अगर हम गवर्नमेंट को देखें, उसकी पॉलिसीज को देखें, तो काफी चीजों में इंप्रूवमेंट है, जिसमें करंट करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसमें ट्रेड डेफिसिट है, गो कि हम एक्सपोर्ट का जो बैंक है वो उस तरह से नहीं बढ़ा पाए हैं जितना कि हमें बढ़ाना चाहिए था, उसके लिए प्रोडक्शन की जरूरत है जो कि स्लो डाउन है। फिर हम अगर उसकी बात करें डिस्काउंट रेट पे, तो वहां पर हॉट मनी की बात होती है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमारे पास काफी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन क्या हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ट्रिगर कर पा रही है या हिला पा रही है, तो उस तरह के इशारे हमें अभी देखने में नहीं मिल रहे। प्राइम मिनिस्टर का बार बार कहना कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हमने तकवीयत देनी है, लेकिन वो हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर इसी वजह से पॉलिटिकल सिटेंस वो वाली सिचुएशन भी है, उसको देख के जो इन्वेस्टर जो करना भी चाह रहे थे इन्वेस्ट, वो भी अभी इसी सोच में है कि हालात नॉर्मलाइज हों पोलिटिकली तो फिर वो इंटरवीन करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेकर आए। तो पोलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए तो वहां से हमें कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और बिजनेस वाइज देखा जाए तो वो भी स्लो डाउन का है, और हमेशा जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स के साथ वेरी थिन लाइन इन दोनों के दरमियान में, जब तक ये दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो इन ईदर वे, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, तो इसी वजह से हमें इंप्रूवमेंट जो आ रही हैं उनका सही तरह से इम्पैक्ट भी नजर नहीं आ रहा, और ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर साइड है गवर्नमेंट की वो क्योंकि सुस्त रवि का शिकार है, जैसे कि हम PMLN गवर्नमेंट के अरसे में देख चुके हैं कि वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से जैसे भी हालात हों आपके इकोनॉमी का पहिया चलता हुआ नजर आता था। गवर्नमेंट एक रुपया जब इकोनॉमी में स्पेंड करती है तो उसका फिर मल्टीपल इफेक्ट आना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेंडिंग क्योंकि बहुत कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह करंट एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ रहे हैं जो कि शुरू से बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें पेंशन और इस तरह के अफराजात तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट साइड पे कुछ काम उस तरह से हाजिर खानी हो रहा है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में पॉजिटिविटी।
ये एक मुश्किल या नाकाम हिकमत अमली आप कहेंगी, या ये मजबूरी भी है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है, लोन्स है, लोन से रिटर्न करने हैं, कर्जे में चोर हो चुके हैं, कैसे आप देखेंगे कि वाकई इनको शायद ये अंदाजा नहीं है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी का पहिया चलता रहेगा?
देखिए ये तो बहुत बेसिक कैनेडियन इकोनॉमी का रूल है कि आप स्पेंड करेंगे तो उसका ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट या रिपलिंग इफेक्ट जिसको कह लें वो आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हम अगर एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं डेट की वो बहुत बढ़ चुकी हैं, तो ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर है, जो हमने सूद जो है कर्जों का वो उतारना है, हालांकि अभी उसकी ओरिजिनल जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको नहीं, अभी हम सिर्फ सूद को उतार रहे हैं जो कि बहुत बड़ी हैवी अमाउंट्स हैं जो हमें देनी पड़ रही हैं। तो पता तो सभी को है ये क्यों नहीं, सब बहुत मंझे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं वो सब देख रहे हैं इन चीजों को, लेकिन एक तो हम क्योंकि स्टेबिलाइजेशन IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, वैसे भी एक्सपेंडिचर को स्लो डाउन होना होता है, और अभी सिचुएशन भी इस तरह से है कि गवर्नमेंट कर भी नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अगर PMLN का अगर हम पूरा रवैया देखें जो पिछले साल उनका सालों में उनका रहा है, तो वो इन एनी वे वो अपनी एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस को रोकते नहीं है, जिसकी वजह आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज नजर आती रहती हैं जिस और उसका एक पॉजिटिव रुझान रहता है, लेकिन अब की दफा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की आप ये समझ लें एक तरह से टू सम एक्सटेंड नाकामी भी कह लें और मजबूरी भी कह लें, दोनों साइड्स हैं जिसकी वजह से हम इस महज पे पहुंच चुके हैं।
सही, खालिद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं और बड़ा तवील अरसा उन्होंने इकानमी के ऊपर फोकस किया है, तजियाकार हैं पोलिटिकल इशूज़ और पोलिटिकल इकानमी उसको भी फॉलो करते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमतों हुकूमत और ताजरों के दरमियान अभी तक की इतलात के मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हैं और दो दिन शटर डाउन रहेगी, आज का दिन गुजर गया और बुध के रोज़ भी होगी, कैसे ये इम्पेक्ट कर रही है ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन को, जो पहले से ही स्लो डाउन का शिकार है, महंगाई है और उसका रेशो बड़ा है, लोग उससे तंग भी हैं, फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकल मार्चेज आप देख रही हैं, सो ये पूरी जो इकोनॉमी का सीन है या लैंडस्केप है उसको कैसे ये इम्पेक्ट कर रहे हैं ये हालात?
पाकिस्तान की मीशत है और इसमें खास तौर पर जो ताजर तबका है उसकी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखते हैं तो वो शायद बहुत छोटी है, सर्विस क्लास में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स के हवाले से, उनकी जब 98-9 के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश शुरू की गई थी और उस वक्त भी मौजूद जो हड़ताल की गई थी और उस वक्त बजी थे और फिर जो पेशेंट जो है वो दिन आज का दिन अगर आप देखें तो मुसलसल पाकिस्तान की मीशत को दबाव का सामना है, खास तौर पर जो रेवन्यूज हैं उस साइड की पर वो अभी तक उसी तरह अजीब तक नहीं चल रहा है। अभी टैक्स मैक की बेस को वसी करना होगा पाकिस्तान की मीशत को बेहतर बनाने के लिए। अब उसके अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम को आना होगा, और ताजर जो है ये एक मुद्दा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू दिन से फाउंडेशन ऑफ इकॉनमी के मुखालिफ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह भी है कि ये लोग इस हद तक हुकूमत को ऑफर करते रहे हैं कि हुकूमत ये कहते हैं कि आपको कितने रेवेन्यू जरूरत है, हम उतना टैक्स कलेक्शन की जो है आपको गारंटी देंगे और आपका टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी में मतलब लेके जाए।
क्यों नहीं कराना चाहते वैसे, क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर? खालिद साहब ये बताएं कि मईशत चलती है किसी भी मुल्क की, और उसको डॉक्यूमेंट कराने में कबाहत क्या है?
देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का मतलब ये है कि फिर हर साल जो है अपने हिसाबात जो है वो तरतीब देने होंगे और उनको सामने लेके आना होगा। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो इनफॉर्मल जो ट्रेड है, चाहे वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें या चाहे आप मुल्क के अंदर जो तजारत है, उसका हजम पाकिस्तान की जो अपनी मजमूनी तजारत है उससे कहीं गुना ज्यादा है। मुख्तलिफ अंदाजे हैं कि 10 से 15 गुना ज्यादा जो है हजम है उसका। अब आप जो बुनियादी वजह है वो टैक्स चोरी है। कोई शख्स जो है इंफ्रादी तौर के ऊपर कोई ये नहीं चाहता कि वो अपने हिस्से का जो टैक्स है वो अदा करे, और जो ताजर है वो भी उसी मिजाज के और उसी रवैये का जो है शिकार है। यही वजह है कि वो हमेशा से इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की मुखालफत कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है, इस वक्त आप मल्टीपल जो है वो मामला चल रहे हैं कि आपका टैक्स नंबर कुछ और होता है, आईडी कार्ड नंबर कुछ और है, लाइसेंस नंबर कुछ और है, सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ और है, इंश्योरेंस नंबर कुछ और है। ये माजी में भी ये बात ही करी थी कि आप जो नेशनल आपका आईडी कार्ड नंबर है, जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है किसी शख्स का, उसी को आप हर जगह पे उसके
टैक्स नंबर बना दें,
किसी बैंक में चाहे वो आपका एनटीएन हो आगे कभी वो यूज करना चाहिए। ये
हमारे यहाँ अमेरिका के अंदर भी, या आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है या आपका टैक्स नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप आईडी नंबर ही समझिए, सो वो वैलिड है। अगर आपने वही दे दिया है तो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड जो है वो डेटा उसके लिए आ सकता है। तो खालिद साहब आपके ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर दुनिया की जितनी भी ज़ाहिर मुस्तहकम मईशतें हैं कहीं पर आप नहीं सुन सकते कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है? सो पिछली जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं फोकस किया है, और अगर ये लोग टास्क ले रहे हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं?
देखिए ये जो डिफरेंस होते हैं थोड़े टफ डिफरेंस होते हैं कि चाहे आप, मैं कह रहा हूँ कि मुशरफ दौर में जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज थे वो एक बेहतर रजीम थी जिसको बराह रास्त आवाम को जवाबदेह नहीं होना होता, उसको भी घुटने देखने पड़े, इतना बड़ा माफिया है ये पाकिस्तान के अंदर। फिर जो पीएस पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं वो तो बराह रास्त आवाम के मुद्दों से और हर चीज वो आवाम से मुंसलिक करते हैं, क्योंकि तमाम अपने इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो पोलिटिकल इम्पैक्ट को पेश नजर रख सकते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस तरह से ग्रोथ नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। अब ये हुकूमत जो है कि ये सोच रही है कि आपको टफ डिसीजन कुछ लेने पड़ेंगे, उसका बर्डन शायद आम आदमी पर आएगा जो आया भी है, लेकिन जब तक तमाम से तमाम जितने भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एक खास क्लास है जो सैलरी क्लास है इफेक्ट कर रही है या वो लोग जो कंज्यूमर है उनके ऊपर आएगा और वही हो रहा है। तो इसलिए इस बोझ को कम करने के लिए जरूरी है कि तमाम के तमाम सेक्टर्स हों, और मेरा ख्याल है डिसीजन अच्छा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल होंगी, हर्डल्स होंगी, ये लोग मुजाहरे करेंगे, हड़तालें करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत जर्मन रही है तमाम इदारे जो है वो
लेकिन इससे पहले कि मैं नादिया के पास जाऊं तो खालिद साहब इसके पॉलिटिकल कहना चाहिए कि इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेज भी तो हो सकते हैं ना हुकूमत के लिए, अगर वो कामयाब ना रही तो फिर ये पहिया मुकम्मल उलट सकता है।
देखिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल इससे आप अगर सरेंडर कर जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपनी मईशत को तबाह करेंगे और आपको वो संवाद नहीं मिलेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी से तमाम सेक्टर को इकॉनमी के अंदर लाने से आप पीछे नहीं हटना होगा। अगर आप इससे पीछे हट गए तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इसको कामयाब हो गए तो इसके मुमकिन है 3 महीने 6 महीने मुश्किल हो, लेकिन 6 महीने के बाद और आपके 9 महीने 12 महीने साल 1.5 साल के बाद इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा होगा, और वो आपका जो पॉलिटिकल डैमेज 1 साल के अंदर शायद आपको मीडिया के ऊपर, ताजरों के अंदर, सियासी चुनौतों के अंदर वो तंजीद का निशाना बनना पड़ेगा। लेकिन शायद लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया तो 1.5 साल के बाद इसके जो सम्राट होंगे फिर लोग जो है वो कहेंगे कि यार अच्छा था, थोड़ा सा सख्त जरूर था, देखिए आप जब एक मेजर सर्जरी करनी होती है तो आपकी जिसम चढ़ना पड़ता है, तो ये थोड़े से सख्त डिसीजन जरूर होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये इस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो इससे असरात बहुत मुस्बत हो गए आम आदमी के ऊपर भी, सियासत पर भी, मैशत पर भी, माशरत पर भी।
नादिया फारूक हमारे साथ हैं, खालिद जमील साहब हमारे साथ हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगु जारी रहेगी।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है राउंड टेबल, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है अंजुम अरल गिल। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ताजरों की हड़तालें, सियासतदानों की एहतजाज और इस सारी सूरत हाल के मुल्की सियासत और मईशत दोनों के ऊपर असरात। नादिया फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और नादिया जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं और इकनॉमिक कंसल्टेंट हैं विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रखा है खालिद अमीर साहब ने, सीनियर साफी हैं, तजयकार हैं इस प्रोग्राम में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम कोशिश करें कि हमें कैसर अहमद शेख भी ज्वाइन करें, मेंबर नेशनल असम्बली और PMLN के रहनमा हैं, इकोनॉमिक कमेटी के मेंबर भी हैं, खुद बजात खुद बिजनेसमैन भी हैं, सो हर तरह का वो नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं। सो नादिया आप हमें अगेन, पहले अगर हम सिर्फ इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएँ, इस पर आपको लगता है कि हुकूमत को ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए या अगर एक पोजीशन ले लिए तो अब उस पर कायम रहना चाहिए? इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन आखिरन बजात खुद बिजनेस कम्यूनिटी के लिए भी फायदा मंद होती है या नहीं? जी नादिया
जी, मुझसे
जी जी ये आपसे।
देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो पता चल जाता है, सारी बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन अम्ब्रेला। इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डॉक्यूमेंट होना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक पार्लर से लेके एक बुटीक से लेके बताऊं कि जो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं और जिनके आउटलेट्स दुनिया में बहुत से मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी वो पेमेंट कैश में लेते हैं, वो कभी भी आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि वो डॉक्यूमेंट होना नहीं चाहते हैं। बेशक पुरानी पिछली गवर्नमेंट जितनी रही है 70 सालों में ऐसा नहीं हो सका, अभी ये गवर्नमेंट करना चाह रही है, लेकिन बात वही है ना कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर गवर्नमेंट को ही ना रहने दिया जाए तो कैसे ये इसको कर पाएंगे? तो एक लिहाज से उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया खालिद साहब ने माफिया का, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन मैं भी यही कहूंगी कि आप यही कह लें, यही तस्वर कर लें, या जो भी है अभी जो जिस वक्त करंट जो सूरत हाल है वो पॉलिटिकली बिल्कुल भी वायबल नहीं है कि इस किस्म के रिफॉर्म्स और इस किस्म के फैसले लिए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना उस तरह से वो मजबूत फुटिंग पे नहीं खड़ी है कि वो इस तरह के फैसले कर पाए ताकि उसकी अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी रहे। अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली इसका भी ताजर जो है, इसके अलावा गवर्नमेंट को काम करने के लिए जैसे मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गवर्नमेंट ने, जो कि इंतहाई अच्छा स्टेप था, हम पिछले कई सालों से, बल्कि एक दो हमें तो अशरे हो चुके हैं जिनमें हमारी ये टेररिज्म और इस किस्म की एक्टिविटीज रही जिसमें फोन बंद कर दिए जाते थे, जैमर्स लगा दिए जाते थे, तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, वो काम कर डाला, मगर करने के लिए इनेबलिंग एनवायरमेंट कोई सिस्टम नहीं फॉर्म किया। और अभी आप यहाँ पर जाके देखें, अगर जिस ऑफिस के अंदर वो सारी रजिस्ट्रेशन हो रही है वो एक छोटा सा कमरा है और उसमें हजारों की तादाद में लोग रोजाना आते हैं अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाने के लिए, तो काम इनके अच्छे हैं, रिफॉर्म्स अच्छी हैं जिनको ये करना चाह रहे हैं, इस्लाहात अच्छी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह से सिस्टम नहीं बना पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कम्युनिटी की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको बताया जाए आपको भी क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, अगर आप अपने आप को डॉक्यूमेंट कर देंगे तो इसके लिए, इसमें आपके लिए भी बहुत से फायदे हैं, और जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है और जिस तरह से ये थ्रेट और ये जो स्टोलन अमाउंट्स हैं और इस तरह की बेतहाशा चीजें हैं जो कि सारी इसमें
जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ना जी, बिल्कुल वहां पे, यानी अब देखें ना कराची के अंदर जहाँ जो बिजनेस हब है वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर अगर बिजनेसमैन अपनी जेब से लाखों रुपए लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स दें तो गवर्नमेंट उसको इश्योर करे। खालिद साहब बिजनेस काउंसलिंग के ऊपर आइएगा कि इटसेल्फ आप नए सिरे से कोई भी चीज़ जब मुतारिफ कराते हैं तो एक मुजाहमत जो है वो बड़ा फितरी रद्द अमल है वो उसके तौर पर सामने आती है। तो खालिद साहब ये जो बिजनेस काउंसलिंग होनी चाहिए इस चीज़ को सरफ नज़र किया गया है या अभी भी इस पर काम हो सकता है? आप हमें जर्नलिस्ट को तो काउंसलिंग देते रहते हैं, इकोनॉमी भी आपकी बीट है, सो इस रेफरेंस में क्या रोल प्ले कर सकती हैं इवन जो खास में जो ब्रिज करें गवर्नमेंट को भी और बिजनेस कम्युनिटी को, कुछ ऐसे इदारे?
देखिए, बिजनेस काउंसलिंग ठीक है, ये अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसमैन इतना सादा नहीं होता। बिजनेसमैन बहुत जहीन आदमी होता है और इसीलिए जो है कि वो हजारों लगा के लाखों लाखों लगा के करोड़ों और करोड़ों लगा के अरबों का कमाता है। तो उस शख्स की काउंसलिंग जो है कि आप जितनी मर्जी कर ले, जब नीयत खराब होगी, जब आपने इरादा ये कर लिया है कि हमने फैसला नहीं देना, हुकूमत को नहीं कर सकता, इसमें एक 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 रीजन ये भी है कि जो ताजरों का या एक आम आदमी का इस बार है ना, हुकूमत पर इस बार है कि जो उनका पैसा है शायद वो सही यूटिलाइज नहीं होता, एक करप्शन की नजर में होता है या बैड गवर्नेंस की नजर हो जाता है, एक वजह ये भी है। उस एतमाद की बहाली के लिए आपको एक तरफ जो है करप्शन की रोकथाम के लिए बड़े मौसर इकदाम करने होंगे, गुड गवर्नेंस बयान करनी होगी, जब एतमाद ना होगा फिर लोग स्टेप लेना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरा ये भी मामला जो है कि ये मैं ये समझता हूँ कि जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट के भी हमें पैसा नहीं देना हुकूमत को, बल्कि हमने हुकूमत का पैसा निकालना है या जिधर से माल बनता है वो बनाना है, इस माइंड सेट को चेंज करना होगा। और कौमी जिम्मेदारियां जो हमारी हैं, मेरा ख्याल है कि वो खास तौर पर अभी इस एज के लोगों को जिन्होंने फिकर दिया है कि पाकिस्तान की मीशत सियासत और मार्शत के अंदर बहुत ज्यादा गहरी जड़ें बना ली हैं, उनको इसे शायद नहीं समझाया जा सके, उनकी जितनी जल्दी काउंसलिंग चल रही है नहीं समझ सकेगी। लेकिन आपकी टू थर्ड जो पॉपुलेशन है वो आपकी बिलो 30 ईयर्स है, मतलब टीनेजर हैं, यंगस्टर्स हैं या किड्स हैं, आप तो इस जनरेशन को जो है आप इसको समझा सकते हैं कि आप अगर से अब फैसला कर लें कि आप अपने निसाब में, तालीमी निसाब में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज के अंदर आप ये काउंसलिंग करें कि उनके माइंड सेट में उनकी तरबियत ऐसी हो कि डिग्रियाँ लें सिर्फ, बल्कि तो एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी बने, जिनकी ये जिम्मेदारियों जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो समझने की कोशिश की। जब वो ये समझ जाएंगे तो फिर आपकी 10-15 साल बाद जो जनरेशन होगी जो कंट्रोल की संभावी होगी सर, तो वो बड़े अच्छे निपटाई जाएगी। इसलिए इसलिए आपको कुछ हार नहीं तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जब तक आप लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए अपनी इस जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे, यकीन जाने 20-25 साल बाद इससे बड़ा तूफान आ जाएगा। ये जनरेशन भी अगर उसी माइंड सेट के साथ आई और इसमें जहाँ के मुख्तलि शोबों के अंदर मामला संभाले, फिर इस तूफान कोई नहीं रोक सकेगा, उससे नुकसान भी हो जाता है।
नादिया, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे वो मदद लेते हैं, पैकेजेस लेते हैं या लोन लेते हैं, फिर उनके साथ ऑब्लिगेशंस होती हैं कुछ जिनके ऊपर वो साइन करते हैं। अब एक तरफ सियासत है, बहुत सारे सियासतदान या सियासी जमातें अगर वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसमें पब्लिक की से भी शामिल हो जाती है, वो महंगाई का है। लेट्स अज्यूम कि अगर ये गवर्नमेंट इस दबाव में, दूसरी तरफ मार्चेस भी हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और इकोनॉमिक प्रेशर में पब्लिक भी साथ आ जाती है और इसके लिए कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, नई हुकूमतें बन जाती हैं, कोई नया कहना चाहिए कि कोई यूनिटी ह्यूमन गवर्नमेंट बन जाती है, तो ये जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ये तो यही रहेंगी। सो क्या वो जो भी नया सेटअप होगा वो इनसे फिर के, इनसे हट के गवर्नमेंट को, आम आदमी को अलग से कोई रिलीफ देने की पोजिशन में होगा या हो सकता है?
देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर अगर हम देखें, जहाँ तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो वो तो आप समझ लें कि इन अदर वर्ड्स, मेरे पास कोई खास स्पेसिफिक लफ्ज नहीं है, लेकिन वो हार्टलेस कह लें आप, उन्होंने तो जो आपकी इकोनॉमी को देख के, जो मुल्क की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक रिफॉर्म पैकेज दिया होता है, एंड दे वॉन्ट कि इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाए। इन एनी वे उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है और उसके आउटकम्स आने जरूरी होते हैं। ये अब हमारे अपने ऊपर होता है कि अब लोगों के अंदर और हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें, इसके अंदर अब हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है, इस्टेब्लिशमेंट की बातें और उनकी इन्वॉल्वमेंट और खलाई मखलूक और इस तरह के लफ्ज इतने ज्यादा आ गए और बहुत तेजी के साथ लोगों के अंदर इन लफ्जों के बारे में अवेयरनेस बहुत तेजी से पिछले 1-2 साल के अंदर मैं खुद देख रही हूँ बहुत तेजी से लोगों में आ रही है। तो इस तरह की चीजें جو ہوتی ہیں ایک بہت بڑے طوفان کا پیچ خیمہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کرنٹ سچویشن کے اندر آپ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے بھلے دوسری گورنمنٹ لے کر آ جائیں, تیسری گورنمنٹ لے کر آ جائیں, آپ کبھی بھی پالیسیز کا تسلسل جب تک نہیں لائیں گے, جو کہ ہم نہیں لے کر آئے پچھلے 7 دہائیوں سے, تو ہماری کوئی, آپ دیکھ لیں نہ ہماری گروتھ جب بھی گئی 5% سے اوپر وہ دھڑام سے نیچے آ گئی, اس کے اندر سسٹینیبلٹی کا عنصر ہمیشہ ویک رہا, کبھی بھی ہماری گروتھ نے سسٹین نہیں کیا ایک سرٹن لیول. ہم ہائیسٹ لیول اچیو کر ضرور لیتے ہیں لیکن اس پہ ٹھہر نہیں پاتے, فوراً سے نیچے آ جاتے ہیں. تو یہی ہوگا, آپ اگر پھر تجربہ کر لیں, نہیں اس گورنمنٹ کو کم از کم چلنے دیں, یہ کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے, کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے ہیں, جو کہ بہت اچھے کام ہیں. لیکن میری اپنی ایز این انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ میری سوچ یہ ہے کہ ان پالیسیز کو جن کو اور جو اصلاحاتی پیکیج پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کو لے کے جائیں. دیکھیں ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا, چاہے اس کے اندر ہماری ویکنیسز ہوں گی, خرابیاں ہوں گی, برائیاں ہوں گی, نیمنگ اینڈ شیمنگ سے چیزیں امپروو ہوتی ہیں, لیکن کہیں سے سٹارٹ تو لیں گے نا ہم, جو کہ انہوں نے لیا ہے, بہت ساری چیزوں میں انہوں نے سٹارٹ لے لیا ہے جو کہ پہلے نہیں ہم نے دیکھا, تو ابھی اس کو چلنے دیں. ہاں اس میں خرابیاں, اصلاحات, مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. میرے خیال سے اپوزیشن کو بھی چاہیے اور ہر پاکستانی شہری کو چاہیے کہ وہ, ابھی تو گورنمنٹ, جو پرائم منسٹر نے بہت اچھا ایک فورم بھی بنا دیا جس کے اندر آپ کمپلینٹس رجسٹر کروا سکتے ہیں. اب وہ کسی قسم کا ایشو ہے, آپ صوبائی لیول پہ, فیڈرل لیول پر آپ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروائیں, اور کافی اسٹرانگ سسٹم ہے جو کہ ان کو دیکھ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور حل ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بدل دیں گے تو کوئی اور حل آ جائے گا, ایسا قطعی نہیں ہے. ہمیں پالیسیز کا تسلسل چاہیے. یہی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ پالیسیز کو لے کے چلیں, ہاں اس کے اندر امپروومنٹ کرتے چلے جائیں وتھ سرٹن ریسرچ, وتھ سرٹن جو ریئل آپ کے انڈیکیٹرز ہیں یا جو ریئل سچویشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات کو مولڈ کرتے جائیں. جیسے ہم اگر بات کریں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے میں بھی مانتی ہوں زیادہ ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس سے نیچے آنا ہے, وہ ایک انڈیکیٹر ہے, وہ یہ سوچا جا رہا ہے, اس کے پیچھے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی سوچ یہ ہے کہ وہ آئے گا تو اس سے انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ریسنٹ مانیٹری پالیسی تھی اس میں اسی لیول پہ رکھا ہے, اس کو نہیں بڑھایا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑھے گا.
جی ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور خالد جمیل صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں اس وقت معیشت کے اوپر خاص طور پہ جو اپنا جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں وہ حقیقت کے کتنا قریب تر ہے, ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجمیر الگل. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تاجروں کی ہڑتالیں, سیاستدانوں کے احتجاج اور اس کے مجموعی طور پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اثرات کے بارے میں. خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نادیہ فاروق صاحبہ نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم, چونکہ سیاست معیشت سے الگ نہیں ہو سکتی اور معیشت سیاست سے الگ نہیں ہو سکتی, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. میاں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب چونکہ دونوں پابند سلاسل ہیں سو ان کی پارٹیاں سخت احتجاج کر رہی ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دے رہی ہیں. مارکیٹس جو ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسٹیبل نہیں ہو پا رہی ہیں, کہ پتہ نہیں کیا صورتحال اختیار کر جائے. پھر مارچ ہیں, دھرنے ہیں, حکومت سے, پرائم منسٹر سے جانے کا مطالبہ ہے, اور پھر شہباز شریف صاحب کا تازہ ترین ایک بیان ہے کہ 6 مہینے کے اندر وہ معیشت کو درست کر سکتے ہیں. حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے آلریڈی مشکل فیصلے لے لیے ہیں اب اس کے ثمرات آنے ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ, شاید اپوزیشن اسی بات پہ کھیل رہی ہے کہ اگر یہ ثمرات واقعتاً آ جاتے ہیں تو پھر ان کی پولیٹیکل پوزیشن زیادہ مستحکم ہو سکتی ہے. کیا ہے انڈیپینڈنٹ انالیسز, آپ کیا ہے دونوں طرف کا ورژن آپ کے سامنے رکھا ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو پچھلے 2 ادوار گزرے ہیں ان کی جو پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہیں گی 6 مہینے میں یا 1 سال میں ہم مادے پر بنا لیں گے تو یہ اس سے مزاق بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں ان کے اندر مسلسل یہ پارٹی حکومت کئی سالوں سے چل رہی ہے, پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ کئی سالوں سے حکومت کر رہی ہے, مرکز میں دونوں بارگین لگاتے رہے. اب ٹھیک ہے کہ 6 مہینے ہم یہ کر لیں گے، 4 مہینے میں یہ کر لیں گے، تو یہ ریفارم سے نکال ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اصل ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ناجی بات کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جتنی اکنامک پالیسیز ہیں، یہ جو بہتری کی سچویشن ہوتی ہے اس کے لیے میں اگین آپ یہ کہوں گا کہ ہمیشہ پاکستان یہ ہوا ہے کہ بڑے شارٹ سائٹڈ ڈیسیژن لیے گئے. ہر حکومت نے جتنی اکنامک پالیسیز بنائی یا اکنامک ڈیسیژن لیے، انہوں نے یہی دیکھا کہ ہم نے 3 سال بعد 2 سال بعد یہ 4 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، تو عوام کے اندر ووٹ لینے ہیں، تو عوام کیا ریئیکٹ کریں گے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سے جو ہے کہ شاید یہ الیکشن تو ہم گزار لیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ابھی آنے والی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس پہ کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں.
ٹھیک ہے، اب ذرا ایسا پولیٹیکلی یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو طرف ان کا ایجنڈا ہے، دوسری طرف یہ کہ اب اگر حکومت جس سے تاجر راضی نہیں ہے اور وہ 2 دن کی ملک بھر میں ملکگیر ہڑتال پہ ہیں، 4 مہینے سے مذاکرات کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں، سو یہ ساری فورس بھی اگر ان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل جاتی ہے جو حکومت کو کہنا چاہیے کہ اپنے چلتا دیکھنے چاہتے ہیں، سو یہ امپیکٹ کرے گی پولیٹیکلی؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اتنی بڑی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں. ان دونوں کی جو پاکستان مسلم لیگ یون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی لیڈرشپ اریسٹ ہوئی، ان کی حکومتیں ماضی میں بھی ختم ہوتی رہی، تو کبھی کسی ایک شہر کو یہ نہیں بند کر سکتے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ان کا ملک بھر میں مدرسوں کا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، اور وہ ان تمام طلبا کو جو اسلام کے نام کے اوپر جو ہے ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، وہ اس کی آڑ میں سب کچھ کر رہے ہیں، تو شاید کچھ لوگوں کو امید بندی ہے کہ بتائیں ان کی آڑ میں ہم کچھ کوئی حکومت گرا لیں گے یا کچھ کر لیں گے. میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے کہ جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پتے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی جلدی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کو اتنی لگتا ہے کہ بہت بے چینی ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہیں، اور ابھی وہ مناسب تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی تحریک اس میں سے چلائی جاتی جس میں چلائی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا حکومت کے، جتنے بھی پالیسی میٹرز ہیں یا ڈسیزنز ہیں ان کے سمجھا سامنے آ رہے ہیں، یا ان کے جتنے نقصانات جو بھی ہے پہلے اس کے سامنے آنے دیتے. صرف مہنگائی کی بنیاد کے اوپر جیسے بھی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی بڑی طریقے نہیں چلتی. عوام سمجھتے ہیں کہ ماضی میں انہی لوگوں نے جتنے بھی آج پاکستان اگر قرضے میں دبا ہوا ہے، یا اس کی جتنے بھی اگر پنجی ترقی نہیں ہے یا معاشرے ترقی نہیں ہے یا بکاس بہت زیادہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار صرف بی ایس ایف میں بھی 1 سال ہوا ہے نا، پچھلے 2-3-4 دہائیاں دیتے تین کی حکومتیں تھی. عوام اتنے ہی بے وقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے سیکٹر اس کے ذمہ دار ہیں. ابھی یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری ہوئی ہے، کچھ آج کل ٹرینڈ نظر آتی ہے کہ پالیسی میں جو ہے کہ تھوڑی سی کچھ بہتری کی طرف ہے. اب ان کے اثرات جو ہیں کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ 6 مہینوں کے اندر اثرات نظر آنے چاہیے، 1 سال کے اندر کچھ اثرات نظر نہیں آئے، اس میں بھی آپ ان کو دھکا دے دیں. میرا خیال ہے یہ آج یاتری ہوگی، ان کو تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے، ملنا چاہیے. اور یہ جو باقی دونوں بڑی پارٹیاں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اتنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے دن سے ہی وہ اس حکومت کے قیام کے پہلے دن سے وہ تو حلف لینے کے لیے تیار نہیں تھے، تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو مادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر نون لیگ نے حلف بھی اٹھایا آخر پارلیمنٹ میں. تو دونوں سیاسی جماعتیں ان کو پتا ہے، انہوں نے حکومتیں کی ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہے پچھلے 3 سالوں سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں وہ بڑے اقتدار کو لوٹتے رہے ہیں، مرکز میں بھی ہمیشہ انہوں نے مزے لوٹے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اقتدار سے بالکل دور ہو گیا، تو اس لیے تھوڑی سی بے چینی لگی ہوئی ہے ان کو، اور میرا خیال ہے ان کی بے چینی ایک ایک کر کے تمام نکار ہو گئے ہیں، وہ کار جب ختم کر دیں گے جو ہے شاید ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. میرا خیال ہے تھوڑی انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکلی، لیکن چیزوں میں جب ان کے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہونا شروع ہوں گے، ان کے سمراج جو ہیں کہ وہ جب عوام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر
مزمل اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معاشیات ہیں. اور مزمل صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ نادیہ فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نادیہ کا تعلق جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، اور خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اکانومی کے اوپر خاص طور پہ ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. سو آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی دباؤ ہیں، وہ مجموعی معاشی لینڈسکیپ کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہی ہیں. سوال ایک بیسک اور بنیادی ہے کہ 14 مہینوں میں گورنمنٹ نے کیا ایسا کیا ہے جس پہ لوگ مطمئن ہوں، اور دوسری طرف مہنگائی سے جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا کتنا سبب بن سکتا ہے. مارچز بھی ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جیلوں میں ہونا ہے, اس کی وجہ سے بھی ایک سیاسی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. سو یہ سارے جو پریشرز ہیں یہ اکانومی کو کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر؟
دیکھیے پاکستان جو ہے پچھلے 15 سالوں سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی حکومت اپنا جو ہے دور حکومت شروع کرتی تھی تو کسی کو بھی جو ہے وراثت میں اچھی حکومت یا اچھے معاشی آداب نہیں ملے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو اور اب پی ٹی آئی ہو. اور پھر ساتھ ساتھ جب ان کو اچھے معاشی آداب نہیں ملے انہوں نے بھی جاتے ہوئے کوئی معیشت کو کچھ پھلتا پھولتا یا جسے کہتے ہیں کہ اچھی حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے. تو عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی انہیریٹ کیا, اور عمران خان کی گورنمنٹ نے جو سب سے بڑا چیلنج انہیریٹ کیا تھا وہ تھا پاکستان کا ایکسٹرنل خسارہ, اور پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا. اس کے دو ہی طریقے تھے, یا تو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا کے یا اتنا قرضہ لے کر اپنی معیشت کو اسی رفتار سے چلاتے, یا ہم جو ہے قرضے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے معیشت کی رفتار کو پہلے شروع کرتے. تو حکومت نے جو ہے دوسرا راستہ اختیار کیا اور روپے کی قدر میں گراوٹ کی جو ضرورت تھی, ورنہ اگر روپے کی قدر میں گراوٹ نہیں کرتے تو ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ رہتا. شرح سود کو اتنا زیادہ کر دیا کہ لوگ اپنی جو ہے کنزمپشن کو جو ہے ختم کر کے سیونگس کی طرف آ جائے. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو پاکستان کا جو ایکسٹرنل شاک پاکستان کو لگنا تھا یا ڈیفالٹ بینک سچویشن تھی, اس میں تو پی ٹی آئی کی حکومت کامیابی سے واپس لے آئی. لیکن آپ کو پتا ہے جب بھی کسی شخص کا علاج ہوتا ہے تو اس کو اس علاج کے ٹوٹل میں جو ہے سائڈ افیکٹس ملتے ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علاج بھی ہو جائے اور وہ اس کو کوئی فرق نہ پڑے کسی اور چیز کا. تو ہمیں ہماری معیشت کو ایک سائڈ افیکٹ جو ہے اکنامک سلو ڈاؤن کی صورت میں سامنے آیا تھا. وہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے وہ ہماری جو جو اپوزیشن تھی جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں 10 سال حکومتیں کی براہ راست یا غیر براہ راست, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سال میں جو ہے وائٹ پیپر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کے سامنے, اور وہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نہایت ہی نااہل ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بھی حکومت جو ہے اپنے 5 سال کے بعد, جیسے میں نے پہلی بات کہی کہ اچھے آزاد چھوڑ کے نہیں گئی.
صحیح ہے.
اب یہ جو ہے لیکن یہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہائی تنگ یہ کیا گیا تھا کہ پورے ملک کی تمام اپوزیشن جو ہے یہ آزادی مارچ کا حصہ رہے گی اور یہ حکومت کو چلتا کرے گی, تو وقوعات کے برعکس ابھی تک نتائج آ رہے ہیں. اور جیسے بتایا جا رہا تھا پہلے کہ جی پورے ملک کو کنٹینر سے بند کر دیا گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, ابھی تک 3 دن سے مارچ جاری اور ساری ہے, کوئی ایک ایسی چیز ہمیں نہیں سننے کو ملی
رکاوٹ والی
جس میں سیکیورٹی ایجنسیز یا ان کی کوئی جھڑپ ہوئی ہو.
ٹھیک ہے.
تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اپنا آزادی مارچ ہے اب آہستہ آہستہ ڈائلوٹ ہونا شروع ہو گیا, اور 31 تاریخ کو اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد ڈسبرس ہو جائے گا.
تو اس سے پھر اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اور اس کا امپیکٹ اکانومی کے اوپر ہو سکتا ہے.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم میجر لیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے جو اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی نیا پتہ کھیلنے کو نہیں ہوگا. تو ہم 31 تاریخ کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے جو شور شرابہ ہے وہ کم ہوگا, اور وہ جو ہے
وہ بریدنگ سپیس ملے گا حکومت کو,
کی طرف لے جائے گا
حکومت کو. نادیہ فاروق سے بھائی آپ بتائیے گا, ایک تو چونکہ آپ سے میں خاص طور پہ پھر آپ کے انٹرنیشنل ایفیلیشن کے سبب ذرا وہ کوشچنز کرتا ہوں, بات پولیٹکس اور اس کے اندر بھی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہو سو جو انٹرنیشنل فائنانشیل آرگنائزیشنز ہیں جن سے ملک قرضے لیتے ہیں, پاکستان نے بھی لے رکھے ہیں, سو وہ اپنی کمٹمنٹ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, ایمن جو انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں مختلف اقساط اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟
دیکھیے جب بھی انٹرنیشنل جو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب بھی پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو لون دیتے ہیں تو وہ پوری ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں جس میں ان کا یہ دیکھنا ہوتا ہے ان کو کہ کیا پے بیک جو ہے وہ کیسے ہوگا. तो यकीनन इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो जरूर रुकावट का बाइस भी बनती हैं और उनको सोचने पे मजबूर भी करती हैं और बहुत दफा रिजेक्ट भी हो जाते हैं. बने हुए प्लान्स जो हैं वो प्रोजेक्ट जो असाइन होने होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको फील हो रहा होता है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी तो ये मुल्क कैसे कर्जा वापस या उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे बैक कैसे होंगी, तो उसका डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. जो कि अभी हालिया सूरत हाल में अगर हम देखें तो हमने अगर सिर्फ IMF से तो 6 बिलियन का लिया है जो कि इंस्टॉलमेंट्स हैं डिफरेंट उसमें हमें मिल रहे हैं. 6 बिलियन का तो हमारे पे रेकोडेक का ही वो केस जो बना था वो सारा एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके एवज हमें जो असल चीज करने को मिल रही है वो है रिफॉर्म्स, वो इस्लाहात हैं जो कि IMF से हमें करने को मिल रही हैं. उसमें ठीक है हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं भी दुरुस्त या उस तरह से नाफिजुल अमल नहीं है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिस्काउंट रेट, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं से हमने शुरू तो की, इब्तदा तो की, टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें हो रही हैं जो कि इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली. तो इस लिहाज से देखें तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो डायरेक्टली लिंक है हमारी इकोनॉमी के साथ.
आप ये बताइएगा, जैसे मुजम्मिल साहब ये कह रहे थे कि बाहर ये लगता है कि जितना बड़ा प्रेशर हो सकता था से डेवलप नहीं हो रहा, आपके ख्याल में भी अगर ये धरना हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर नहीं करता, ताजरों के आगे भी वो मजबूर नहीं होती है, तो फिर उसके बाद उसको ये स्पेस मिल जाएगा 6 महीने साल का कि इसमें वो फिर इकोनॉमी के ऊपर खास तौर पे आगे बढ़ सके या उसमें कोई उस मंजर को तब्दील कर सके? जी खालिद जमील साहब,
मेरा ख्याल है कि देखिए अगर आप पिछले एक साल को देखें, सबसे पहली जब मैंने पहले कहा जो असम्बली में कहा गया कि इसकी तो हलफ ना लिया जाए वो नाकामी हुई, फिर सेनेट के अंदर तब्दीली की बात की थी वहां पर अपोजिशन को नाकामी हुई और अभी ये सबसे बड़ा कार्ड इस्तेमाल कर दिया उन्होंने. और अगर इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इनकी मुकासिबी हासिल ना हुए तो फिर इनके पास फौरी तौर की तरह की बड़ी तारीख के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा, तो इसलिए हुकूमत को स्पेस मिल जाएगी. और अगर दूसरी तरफ हुकूमत ने झगड़ा का या एक असाबी तनाव का शिकार होकर जो है उसने तेज दिए तो फिर वही लोगों का जैसे मुशरफ दौर में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी से कदम खींचा गया था और फिर आप 5-7-8% ग्रोथ रेट हो गया था, लेकिन फिर भ्रम से करके मिशन वापस आ गई और आपकी 2-3.5% के ऊपर ग्रोथ रेट आ गया था. ये मेरा ख्याल है कि बाहर तो ये लगता है कि हुकूमत डिटर्मिन है और कुछ चीजों के ऊपर जैसे प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अगर पीछे ना हटे तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल मूवमेंट है ये चीजें हैं शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगी.
और अल्टीमेटली ताजरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि
अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना शुरू हो गए तो फिर ये चीजें जो है तो अपोजिशन के हाथ में निकलेंगे और हुकूमत मुस्तैद होती
है. और अल्टीमेटली ताजरों को भी अगर वो पीछे हटके बैठे हैं, स्ट्राइक्स भी ज्यादा देर नहीं चल सकती, पैसा भी मार्केट में लाना पड़ेगा. मुजम्मिल साहब आखिरी 3 मिनट दोनों पैनलिस्ट को, एक एक मिनट दूंगा, क्या आप रिकमेंड करते हैं इन प्रेशर्स में गवर्नमेंट को कैसे आगे बढ़ना है? कमिटेड रहे जो उसकी पोजीशन है, थोड़ी सी बार्गेन करे, लचक दिखाए, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड रखे, साथ लेके चले, क्या करना चाहिए?
देखिए सख्ती से कोई काम अच्छा नहीं होता और गवर्नमेंट को जो है सबको ऑन बोर्ड लेना होगा और तरीके से जो है चीजों को लेके आगे जाना पड़ेगा. एकदम जो है जिसे कहते हैं कि दरवाजा खुला रखें नेगोशिएशन का और साथ साथ ताजिर कम्युनिटी को भी जो है आपने उससे दस्तबरदार होना होगा और कुछ ना कुछ मुल्की मईशत में हिस्सा डालना होगा.
सही. नादिया जमील साहबा.
जी बिल्कुल वही बात है कि गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल रहना होगा, जरूर हार्ड डिसीजन लें लेकिन ऐसे ना लें कि जिसपे निगोसिएशन ना हो सके और लचक ना दिखाई जा सके, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी बहुत स्लो है और दूसरी तरफ इस तरह की स्ट्रिक्ट फैसले जो हैं वो अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली मजाहमत आएगी.
खालिद जमील साहब, क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? इनिशिएटिव तो ऑलरेडी इन प्लेस है लेकिन कितना कमिटमेंट के साथ इस पे कायम रहना चाहिए या थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है?
कमिटमेंट की तरफ में कायम रहना चाहिए, लचकदार रवैया जरूर होना चाहिए, दरवाजे निगोशिएशन के खुले हों लेकिन आप सर इतना ना झुकाएं कि आपका सर उतार के ले जाए कोई. आप अपने बेसिक प्रिंसिपल से उनके ऊपर कायम रहें और लचक वहां पर दिखाएं जहां पर बातचीत को और मामला को आगे बढ़ाया जा सके. سر تو اتنا مت جائیں گے آپ کا ساری قلم بن جائے گا.
مزمل صاحب ایک سوال آخری اور اس میں بھی جن سیکنڈ, ہمارے پینلسٹ دونوں سے ہم نے یہ رائے لی تھی کہ بزنس کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا جو ٹیکس کا کلچر ہی نہیں ہے, اکانومی ڈاکومنٹیشن ہونے کا کلچر ہی نہیں ہے, تو یہ چیزیں نئی اور مشکل آ رہی ہیں. اور خالد صاحب نے پہلے کہا کہ فوجی حکومت بھی وہ ان کو قائل نہیں کر سکی تھی, ان کو گھٹنے ٹیکنا پڑے تھے. سو یہ بزنس کاؤنسلنگ کتنی بیچ میں ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ہی کا فائدہ ہوگا, پوری دنیا میں اگر یہ ماڈل سکسیزفل ہے تو آپ بھی اسی کو فالو کریں.
دیکھیں بالکل بزنس کاؤنسلنگ اور اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے ٹیکس لیا جائے گا, اگر اس کو بتا دیا جائے, ایکسپلین کر دیا جائے تو بہت آسان ہوگا. اصل میں پرابلم یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کی معیشت میں جتنا زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اتنا زیادہ کاروباریوں کے کمانے کے لیے جگہ بنتی ہے, تو شاید پاکستان کی حکومت کو ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ آپ کا. اور ایک جاتے جاتے سے ایک جملہ, جیسے کچھ بزنس مین نے کہا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں کہ ٹیکس فائل کیسے کرنا ہے, امریکہ اور باقی دنیا میں باقاعدہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہے, 10-15 دن کی ٹریننگ سے اگر کنسلٹنٹس کی کھیپ تیار ہو جائے تو اٹ سیلف وہ اپنے سال کے لیے ایک بہتر جاب جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. پروڈیوسر بینجم ہیرلڈ گل, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے, کرتارپور راہداری کے معاملے پر دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں, اور 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا, جس کے سبب ہندوستان کے سکھوں کو پاکستان میں واقع اپنے مقدس مقامات تک آنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تاہم یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس سہولت کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی آئے گی یا نہیں, اور یہ کہ بھارت میں اس پر کیا رد عمل ہے. وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں ہندوستان ٹائمز کے دہلی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پرتاب سومونشی اور ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کی اسما شاکر خواجہ نے گفتگو کی. ہندوستان میں رد عمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پرتاب سومونشی کا کہنا تھا,
دیکھیے جو یہاں کا ایک نیگیٹو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, بس لوگوں کی تھوڑی آشنکائیں ہیں, جیسے خفیہ ایجنسیز نے یہاں ایک الرٹ دیا ہے کہ وہ جو خالستانی ٹیررسٹ ہیں, خالستانی جو آؤٹ فٹس ہیں, وہ جو انڈیا میں تو نہیں ہیں لیکن وہ کینیڈا اور تمام جگہوں پہ ایکٹیو ہیں, تو وہ ظاہر طور پہ سکھزم کے نام پہ وہ آنا چاہیں گے اور ان کو پاکستان کی ایجنسی ان کو پروموٹ کرے گی, ان کو بلائے گی. تو اس کے بعد ایک یہ ساری چیزیں تو اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں. باقی کمیونٹی وائز بات سکھزم کی نہیں ہے, ریلیجن ہو, کرکٹ ہو, اور یہ ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ایک خیر مقدم تو بہت زیادہ بڑے حصے میں سب ویلکم ہی کر رہے ہیں.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹینشن کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, کیا اس قسم کے جیسٹرز آف گڈ ولز جو ہے جس کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں تعلقات کی سرد مہری پر کوئی اثر ڈالیں گے؟
اس ٹائم جو کرتارپور صاحب کوریڈور ہے اس کو باقی کشمیر ایشو سے الگ کر کے دیکھیں, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں گرم جوشی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ جب بھارت کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کی, پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے کو اہمیت دینا سیکھے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی باہمی اتفاق سے کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمارے تعلقات گرم جوشی کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں البتہ ہمیں اس وقت پاکستان کی حکومت کو اور اسپیشلی پاکستان کی حکومت کو اور بھارت کی حکومت کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناک سیکیورٹی کی سچویشن ہے خطے میں, اس کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک سکھ اقلیت کے مذہبی رجحانات اور مذہبی عقائد کے لیے کو بھی افیکٹ کرے. یہ بڑی میچیورٹی اور میں یہ کہوں گی دانائی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کرتارپور شاپ پہ تاریخی دستاویز پہ سائن کر دیے, دستخط کر دیے. اور اس سے ایک اور چیز بھی جو سامنے آتی ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلے کو الگ الگ پرسپیکٹیو سے ہی دیکھیں, اور ایک مسئلے کے اوپر اگر 10 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ایشو پہ بھی 10 قدم پیچھے جائیں. ہو سکتا ہے ہم اس ایشو پہ 2 قدم آگے چلے جائیں. ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا پاکستان اور بھارت نے دستخط کیے ہیں, اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت اور پاکستان اگر چاہیں تو مختلف معاملات پر, مختلف کانفلکٹس کے پہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر یہ ممکن ہے تو کشمیر پہ بھی بیٹھ کے بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ساتھ یا انٹرنیشنل میڈیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن فرسٹ اپروچ اپنائیں. تو ڈیفینیٹلی وقت شاید آ گیا ہے کہ ایز اے ڈیموکریسی ہم سب اپنے اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کو کے لیے اپنے ملکوں کو سیف زون بنائیں, اسپیشلی بھارت, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بھارت اس ٹائم مذہبی رواداری کا انڈیکس ہو, اقلیتوں کے ساتھ تحفظ کا انڈیکس ہو, ایون جمہوریت کی کوالٹی کا انڈیکس ہو, جس کو ہم ڈیموکریسی کوالٹی انڈیکس یا وی ڈیم آن لائن اویلیبل ہے, اس میں تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں پڑھ رہی تھی 2018 کا, جس میں ڈیموکریسی کا ایک بیسک رول ہے فریڈم آف اسپیچ, اس میں بھارت 140ویں نمبر پہ ہے, پاکستان 142ویں نمبر پہ ہے. سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اعلیٰ اخلاقی اور جمہوری اقدار کے تحفظ پہ توجہ دیں.
قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
السلام علیکم.